सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः और ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियो लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವ ಷೋಡಶ ಕಾರಣ ಪರ್ವ दोनों ही आज के दिन समाप्त हुए, किंतु 16 दिन की इन यात्रा से जो विशुद्धि बड़ी, जो धर्म के प्रति प्रथम बार जागृति आई, आत्मकल्याण के प्रति आस्था जगी, यह सब कार्य पुरुषार्थ के बिना नहीं हुआ है। क्या पुरुषार्थ किया आप लोगों ने? बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, जो अनादिकाल से किया ही नहीं था किसी भाव में। ऐसा पुरुषार्थ 16 दिन में हुआ है। यहाँ बैठकर 16 दिन तक अजितनाथ भगवान के तीर्थंकर के सानिध्य में दस धर्मों की पूजा की, षोडश कारण के 16 भावनाओं की पूजा की, नित्य एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा उपदेश सुना। इन दोनों का प्रभाव अपने आत्मा के ऊपर अवश्य कुछ न कुछ हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? हमको दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है क्योंकि हमने अनेक चातुर्मास की, परंतु 27 नक्षत्रों का उदय कहीं नहीं हुआ। थोड़ा सत्ताईस नक्षत्रों ने 2011 के चातुर्मास को सफल बनाया है। श्रावक जीवन एक ऐसा जीवन है जिस जीवन को हमने आज तक समझा भी नहीं, समझने का प्रयत्न भी नहीं किया, और समझने का अवसर भी हमें कहीं प्राप्त नहीं हो पाया था। ये पहली बार है कि हम इतना कुछ करने के भाव को संभाल रहे हैं। पहला जैसा था वैसा। आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने धर्म का उपदेश दिया। आर्यखंड में जन्मे और आर्यखंड वासियों को धर्म का उपदेश दिया। उनका धर्म मानव धर्म का उपदेश था। उन्होंने देवताओं को उद्देश्य बना करके कम उपदेश दिया। उन्होंने त्रयंचों को भी उद्देश्य बना करके कम उपदेश दिया। दिया, लेकिन बाद में दिया, पहले तो मनुष्यों को दिया, क्योंकि मनुष्य पात्रता रखते हैं, पात्र होते हैं, और पात्र होते हैं इसलिए सारे सिद्धांत ग्रंथों में ये आता है कि मनुष्य को अधिक से अधिक पहले से लेकर 14 तक सारे गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान की 14 सीढ़ियों को कौन चढ़ सकता है? मनुष्य ही चढ़ सकता है। देवों के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? 4 सीढ़ियां हैं, और पहले की 3 सीढ़ी तो कोई मतलब की नहीं, चौथी सीढ़ी मतलब की है। देवों को एक ही सीढ़ी चढ़ना संभव है। धर्म की सीढ़ी यदि देव चढ़ना चाहता है तो सम्यक्तु की सीढ़ी चढ़ सकता है, संयम की सीढ़ी अंश मात्र भी वह चढ़ नहीं सकता। इन अर्थों में मनुष्य पर्याय कितना श्रेष्ठ है, यह 16 दिनों में हमें समझ में आया है। और इसलिए एकाएक ही भाव जग गए, 27 नक्षत्रों का उदय हो ही गया। बहुत ही शुभ सूचक है, ये नक्षत्र जगमगाते रहेंगे। इस आर्यखंड को वे पावन बनाएंगे। इस धरती पर जब तक मुनि धर्म और श्रावक धर्म नहीं होता तब तक यह धरती भी पावन नहीं कहला सकती। धरती की पवित्रता अहिंसक जीवों से है, और अहिंसक जीव धर्मात्मा कहलाते हैं, और ऐसा धर्म अपने जीवन में जगने जा रहा है। हम पुरुषार्थ पूर्वक उस धर्म को अपने आत्मा के भीतर स्थान देने जा रहे हैं। बहुत नसीब, अच्छा नसीब है। 10 धर्मों में यही प्रेरणा मिलती है कि धर्म केवल पूजा के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म आचरण के लिए। और आचरण यदि हमारे पास आ गया, जीवन में आ गया, तो प्रतिक्षण हम धर्ममय हो गए। 10 दिन के लिए नहीं हुए, प्रतिक्षण धर्ममय हो गए। 10 दिन तक जो पूजा की है उसका सार हमारे लिए मिल गया, उसका फल हमारे लिए प्राप्त हो गया, वह आचरण में आ गया। और इसी आचरण के लिए पूजा एक साधन है। आचरण के लिए पूजा है क्या? पूजा के लिए आचरण है? जिनके जीवन में आचरण आता है उनके जीवन में पूजा व्यर्थ होता है। जब कार्य की सिद्धि हो गई, कारण की क्या आवश्यकता? जब मंजिल पर पहुंच गए, मार्ग की क्या आवश्यकता? जब हम छत पर चढ़ गए, सीढ़ी की क्या आवश्यकता? नीचे होना हो तो पुनः आवश्यक है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में वह सीढ़ी से कभी नीचे नहीं उतरता, वो कूद जाता है, पैर फिसल जाता है तो नीचे गिरता है, उतरने का प्रयास नहीं करता। ये सीढ़ियां चढ़ने के लिए है, उतरने के लिए नहीं। और ये सीढ़ियां कितनी हैं? 14 सीढ़ियां हैं। गुणस्थान की सीढ़ी तो 14 हैं, लेकिन जब आप सम्यक्तों के साथ में, सम्यक्तों को साथ लेकर 5वें गुणस्थान की सीढ़ी चढ़ेंगे तो उस सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर 11 सीढ़ियां हैं। वे 11 सीढ़ियां मुनि व्रत को छू रही। 5वीं सीढ़ी पर और सीढ़ियां हैं, वो 11 है, चढ़ना है, इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ना है। और आज के दिन 27 नसैनी लगाई जा रही है, कौन कितना चढ़ेगा वो उनके ऊपर है। सीढ़ियां 27 लोगों को 27 दी जा रही है, कितनी सीढ़ी आप चढ़ सकते हैं यह आपके ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है। सर्वप्रथम हम प्रतिमाओं को समझने से पूर्व श्रावक किसे कहते हैं, श्रावक का स्वरूप क्या है, परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, इसको समझे। श्रावक कितने अक्षर हैं? 3 हैं। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रद्धावान बनता है किस विषय पर? श्रद्धावान सच्चे तत्वों पर, और ये सच्चे तत्व, इन सच्चे तत्वों को जिसने सुनाया है उन पर श्रद्धावान। वो कौन? वीतरागी भगवान। वीतराग अवस्था, ये भगवान की अवस्था है। वो वीतराग थे इसलिए 7 तत्वों का व्याख्यान कर पाए, अन्यथा ये व्याख्यान बहुत मुश्किल है। केवल ज्ञान अगर किसी को ना हो तो 7 तत्वों का उपदेश वो दे नहीं सकते। महाराज आप भी देते हैं, मुनि अवस्था में केवल ज्ञान नहीं हुआ है, 7 तत्वों का तो ही आज तक आप सुनाते रहे, आप भी तो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन ये हमारा नहीं, जो उधर से आया है हम इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, और जो ट्रांसफर किया जा रहा है वह आपके लिए आपके घर तक पहुंचने वाला संदेश है, आपकी आत्मा तक पहुंचने वाला संदेश है। भगवान ने ऐसा संदेश दिया है, इसमें आपको यदि सुख दिखाई देता है, यदि आपका कल्याण इसमें समझ में आता है, यदि आपको इसमें शांति मिल सकती है, तो वास्तविक जीवन तो यही है, इसको आप स्वीकार करें। भगवान ने बताया श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। विवेक जगाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, श्रद्धा जगाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? सम्यक ज्ञान चाहिए। वह सम्यक ज्ञान जो श्रुत है, श्रुत द्रव्य श्रुत रूप है, वह सम्यक द्रव्य श्रुत सम्यक ज्ञान है, वो किधर से मिलेगा? भगवान की वाणी से मिलेगा। तो अजितनाथ भगवान विराजमान हैं, उनके वाणी से जो खिरी थी, या महावीर भगवान ने परंपरा से जो इनकी ही वाणी को खिराया था, गणधर ने पकड़ लिया था, और गुरु परंपरा से जो वह गंगा बहती बहती यहाँ तक आई है, वही आप तक यहाँ पहुँच रही है। इस सम्यक ज्ञान रूपी गंगा में स्नपित होकर हम अपनी श्रद्धा और विवेक को जगाएं, ये हमारा मुख्य कर्तव्य। श्रद्धा जगी तो विवेक आएगा ही, विवेक आया तो श्रद्धा तो रहेगी ही। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, श्रद्धा और विवेक। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उसी प्रकार श्रद्धा और विवेक ये दोनों एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। तो श्रावक किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान संस्कार ये जो पुस्तक है यहां मिलती है, आप ले सकते हैं, आपको हमेशा के लिए घर घर में होगा, ये लेके रखा होगा, लाए भी नहीं होंगे, लाना चाहिए था, आज बहुत अच्छा था। हुँ? सब लोगों ने ले लिया तो शायद घर में रख करके आ गए होंगे। लाए हैं? हाँ, तो छठा पार्ट निकालो इसमें से, जो लोग लाए हैं हाथ में पकड़े, छठा पार्ट, सावा पार्ट, सावा पार्ट पढ़ने के उपरांत ऐसा लगेगा साव आने तक ये सावा पार्ट हेल्प करेगा। साव किसको बोलते हैं? मरण को। श्रावक किसे कहते हैं, उनके कितने भेद हैं? तो श्रावक का स्वरूप बताया है जो श्रद्धावान यानी सम्यक्तवान, विवेकवान ब्रैकेट में दिया है सम्यक ज्ञानवान, तथा क्रियावान यानी सदाचारवान चारित्रवान होता है, उसे श्रावक कहते हैं। श्रद्धा सर्वज्ञ के प्रति, उनके वचनों के प्रति, उनके आचरण के प्रति होनी चाहिए, अथवा सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है। उसी को अपनी शक्ति के अनुसार विवेक के साथ क्रिया में लाता है, तो उसे श्रावक, तो ऐसे श्रावक को ही श्रावक संज्ञा है। श्रावक शब्द का अर्थ निम्नलिखित है, श्रद्धा व विवेक क क्रिया। श्रद्धा सम्यक रूप है, विवेक ज्ञान रूप है, क्रिया चारित्र रूप है। श्रावक के तीन भेद होते, पाक्षिक श्रावक, नैष्टिक श्रावक और साधक श्रावक। श्रावकों में तीन भेद करना चाहिए। धार्मिक श्रावकों को तीन भागों में रखा गया है। जिनके पास सम्यक दर्शन है और किसी भी प्रकार का सीमाचरण यानी चारित्र नहीं है, उस श्रावक को पहले विभाग में रखना चाहिए, पाक्षिक श्रावक। और फिर एक सीढ़ी और चढ़ता है देश संयम की सीढ़ी को, प्रतिमाधारी बनता है, तो प्रतिमाधारी श्रावक को नैष्टिक श्रावक कहना चाहिए। और ये नैष्टिक श्रावक प्रतिमाओं की अपेक्षा से जो जितनी प्रतिमाओं को धारण करता है वो उतने प्रतिमाओं की अपेक्षा से वह नैष्टिक श्रावक ही कहलाएगा। वो पाक्षिक श्रावक के जो गुण होना चाहिए वो तो रहते ही हैं, किंतु नैष्टिक बनने के बाद आचार विचार में बहुत कुछ अंतर आता है, साधना बढ़ जाती है, इसलिए उनको नैष्टिक कहना चाहिए। नैष्टिक का क्या तात्पर्य? निष्ठा के साथ जो पंच पापों को घटाकर, व्रतों को अनुव्रतों को धारण कर, जितनी प्रतिमाओं को वह धारण करता है उतनी प्रतिमाओं को निष्ठा के साथ पालन करता हो, दृढ़ता के साथ, निष्ठा यानी दृढ़ता, आस्था, दृढ़ आस्था के साथ पालन करता हो, तो उसको नैष्टिक श्रावक कहते। तीसरा भेद है साधक श्रावक। साधक यानी, हाँ देखो ये तीसरा विभाग है, पहले विभाग वाले श्रावक को साधक श्रावक की सीढ़ी चढ़े ये कोई नियम नहीं है, पर जो नैष्टिक श्रावक है वो नियम से साधक श्रावक बनना ही चाहिए। साधक श्रावक यानी समाधिस्थ श्रावक, जिसने संलेखना का नियम ले लिया है, संलेखना व्रत साधना प्रारंभ हो गया है, उसको कहेंगे साधक श्रावक। तो कितनी प्रतिमा वाला होता है ये? चाहे दो लिया हो, चाहे कुछ और अधिक लिया हो, चाहे 11 सभी लिया हो, वह नैष्टिक ही कहलाएगा। और अंत में यदि संलेखना व्रत ले चुका है तो साधक श्रावक कहलाएगा। इससे यह मालूम पड़ता है जैन धर्म की परंपरा में अविरत सम्यक दृष्टि जीव को संलेखना अनिवार्य नहीं है, बल्कि जो नैष्टिक श्रावक बन चुका है उनके लिए कंपल्सरी संलेखना व्रत का नियम है। हाँ, ये बात अलग है कि चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक सम्यक दृष्टि है, संलेखना के प्रति अनुराग रख सकता है, भावना भा सकता है और वह अंत टाइम में सभी मोह को त्याग कर आहार पानी वगैरह छोड़कर मरण कर सकता है, लेकिन वह संलेखना की कोटि में नहीं आएगा, वह अभ्यास की कोटि में आएगा। यदि कोई श्रावक ये कल्पना करे कि हम तो सम्यक दृष्टि थे और जीवनांत में हमने बहुत अच्छी तरह से संलेखना को साध लिया है और मेरा मरण इतना अच्छा हुआ है कि नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ही मरण किया है और अंत में हमने सब कुछ छोड़ दिया था, सब प्रकार के भोजन, शरीर का मोह, सब कुछ त्याग दिया था और ऐसा शांति के साथ हमने प्राण त्यागा है, तो हमारे लिए तो संलेखना हो गई, ऐसा कहेंगे क्या? बाल मरण ही कहेंगे। मिथ्यात्व के साथ मरण होता तो बाल बाल मरण कहलाता, सम्यक दर्शन के साथ संलेखना भी कर रहा है, चौथा गुणस्थान है, तो भी बाल मरण है। और प्रतिमा बनकर कुछ दिन तक मेहनत किया है, परिश्रम किया है, संयम के साथ अपने जीवन को गुजार दिया है, बिताया है, तो उनके लिए तो कंपलसरी संलेखना लेना ही चाहिए। और उनका मरण, जो संलेखना लेता है ना, उनका मरण या तो पंचम गुणस्थान में होना चाहिए या तो छठे गुणस्थान में होना चाहिए। व्रति को ही संलेखना है, जो व्रत से रहित है उसके लिए संलेखना का कोई नियम नहीं, अभ्यास कर सकता है पर वो संलेखना नहीं कहलाएगा। कई लोग आते हैं महाराज के पास, महाराज हमारे घर में अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान वर्ती का मरण हो रहा है और आप आओ, क्या हम एक असहिमी का संलेखना कराने के लिए निकल जाएं घर? नहीं जा सकते। और यदि देश संयमी भी हैं तो उनके घर जाएं क्या? वहां भी संयमा संयम है, मिश्र है, तो महाराज को घर पर कैसे ले जा सकते? संलेखना जिसको आवश्यक है ले रहा है, उसी को उठा करके महाराज के पर पहुंचाया जा सकता है, वहां यहां करा लेंगे, वो आता है तो हम करा लेंगे। परंतु एक प्रतिमाधारी का मरण और या आयुर्वेद सम्यक दृष्टि का मरण कराने के लिए घर में मुनि जाए, ये उचित नहीं है, वो है भी नहीं। आगे का सब पता चल रहा है, हमने कहा भी नहीं क्या हो सकता और क्या नहीं हो सकता, सब अनुमान लग रहा है। अपने मूलाचार में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ऐसे श्रावक के मरण के लिए आप घर जाओ, कोई आदेश नहीं है। बल्कि कोई प्रतिमाधारी मुनि के चरणों में आकर के मरण करना चाहता है तो उसका मना भी नहीं, करा सकते। अंत समय में है तो मुनि महाराज के चरणों में ले जाकर उनका मरण कराया जा सकता है। ग्यारहवीं प्रतिमाधारी हो, दस हो, सात हो, दो हो, किसी को भी, तो उनको ले आ सकते हैं ना, घर में क्यों बुला रहे हैं? महाराज वो चल नहीं सकते तो उसको बोरी पर सुला दो और उठा के ले आओ, चार लोग हो करके। चल नहीं सकते ऐसा नहीं, उठना बैठना असंभव है ऐसा भी नहीं सोचना, मुनि को घर नहीं ले जाना चाहिए इन कारणों से। किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके उनको कैसे ले जाया जाए, कुर्सी पर बैठ सकते हैं कि नहीं? बैठ सकते तो कुर्सी पर बिठा दो और कुर्सी को चार लोग मिल करके उठाओ, ले आओ, जो भी उपदेश सुनाना है, जो भी उपदेश सुनवाना है यहां पर ला करके बिठा दो महाराज का उपदेश सुनाएंगे, विशुद्धि बढ़ेगी तो अच्छा मरण होगा, एक लेशा बदल जाएगी, विशुद्धि बढ़ जाएगी, और लेशा बदलने से अच्छा मरण ही होता है, चाहे वो बाल मरण हो चाहे वह पंडित मरण हो, अच्छा मरण ही होगा। दूसरी प्रतिमाधारी कर सकता है ना? नहीं, मतलब ये है कि व्रती हो तो बहुत अच्छा है, व्रती व्रति का ही संलेखना कराएं, ये तो नियम है ही। हमने कहा कि इसलिए अपने घर को आश्रम बनाओ, घर को आश्रम बनाओ का मतलब डेकोरेशन करो। घर को आश्रम बनाने का क्या तात्पर्य है? घर में जितने लोग हैं वो सब धार्मिक बने, सम्यक दृष्टि बने, प्रतिमाधारी बने, कम से कम दो प्रतिमाधारी बन जाएं, तो उस घर में जो भी रहेंगे ना वो शास्त्रानुसार ही सारी क्रियाएं करेंगे परस्पर में। उनका भोजन शुद्ध रहेगा, उनका खान पान शुद्ध रहेगा, उनके घर में नित्य स्वाध्याय रहेगा, वे कभी कोई किसी के मरण पर रोएंगे नहीं। सम्यक दृष्टि जीव भी रोता नहीं, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भी भेद विज्ञान है। जिसको भेद विज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान से शून्य है, वो रोता है। और गीत बना कर रोता है। रोने के लिए गीत बनाता है और संगीत में रोता रहता है, ताल सुर के साथ रोना होता है। तो ऐसे रोने वाले के पास न तो सम्यक दर्शन रहता है, न प्रतिमाएं होती है, श्रावक धर्म ही नहीं होता, वो आश्रम नहीं, वो गृहस्थ आश्रम, आश्रम कह नहीं सकते, वो गृहस्थ का घर है। वो घर को आश्रम बनाना है तो कैसे बनाएं? तो एक कोई भी पहले प्रतिमाधारी बने और नित्य स्वाध्याय करे, और सभी को घर के लोगों को बिठाएं, स्वाध्याय उनसे भी कराएं, स्वाध्याय कराते कराते, सत्संग करते करते, प्रवचन सुनते सुनते, डीवीडी पर गुरुओं के प्रवचन सुनते सुनते, क्या आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। पढ़ो भी सुनो भी। आप दूर जाकर सत्संग नहीं कर सकते हैं तो आज पंचम काल में कितनी बड़ी सुविधा है ये। अगर आपने प्रवचन लगाया और प्रवचन सुनते सुनते वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अगर मरण करता है तो कितनी विशुद्धि बढ़ती है। गुरुओं के प्रवचन लगाना चाहिए अगर कोई मरण कर रहा हो तो, लेकिन अंत टाइम में ही लगाना, ऐसा नहीं बता रहा हूं। हाँ, जब क्या फायदा? नहीं, संलेखना के दिन ही लगाए तो क्या फायदा है? तो समझ में भी नहीं आएगा वो। ये विषय बार बार सुनने के बाद, हैमरिंग होने के बाद अच्छे लगने लगते हैं और कल्याणकारी समझ में आते हैं, क्योंकि इसमें सभी शब्द नए, गुणस्थान नया, परमिष्टि नया शब्द, इसमें जो भी शब्द आ रहे हैं ना, पाक्षिक श्रावक, नैष्टिक श्रावक, साधक श्रावक, सब नए। अब ये व्यवहार में आते ही नहीं, ये व्यवहार में नहीं आते हैं, इसलिए समस्या हो जाती है कि जैन धर्म बहुत कठिन है भाई, उसको क्या सुनना, हमको तो संलेखना मरण हो जाए बस। डायरेक्ट संलेखना, डायरेक्ट संलेखना की बात होती है। मंदिर तो बनाया नहीं, और क्या मंदिर बनाने में तो पसीना आता है, कहाँ से पत्थर लाएंगे, क्या करेंगे, सीमेंट लाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, जगह खरीदेंगे, ये सब हमसे नहीं होगा, डायरेक्ट हम कलश चढ़ाएंगे। कहाँ आकाश में कलश चढ़ाओगे, गिर जाएगा नीचे। तो ऐसा नहीं करना, धर्म करना है, कल्याण करना है, तो जीवन में जितना जल्दी जग सको जाग जाओ। 55 में जाकर जगने की अपेक्षा बचपन में जग जाओ। जैसे हमारा शेरविल जग गया है, उनको वो 2 साल का है, उनको सब पता है किसको क्या कहना। इसमें 4th पाठ उनको याद है, भैया जी को क्या कहना, वंदना, और महाराज को क्या कहना, नमोस्तु बोलता है वो, और इन इन सबको क्या कहना, जय जिनेन्द्र। इतना मालूम पड़ गया, ये बचपन में जग गया है। अब बचपन में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अपने बच्चों को बचपन से ही धार्मिक संस्कार डालना चाहिए, सत्संग कराना चाहिए। गुरुओं के पास तो आप अपने बच्चों को लाते ही नहीं। जो गुरुओं के पास अपने बच्चों को नहीं लाता वह बच्चों का दुश्मन है, चाहे माता हो चाहे पिता हो। उन बच्चों का कल्याण वे दोनों ही नहीं चाहते, वो खुद का भी कल्याण नहीं चाहते और बच्चे को भी करने नहीं देते। तो ये कौन है, दुश्मन है क्या मित्र है? दुश्मन। रोज मंदिर ले जाना चाहिए। अगर गांव में महाराज हैं तो उनका दर्शन करवाना चाहिए। आप एक ही बात से डरते रहते हैं, विकल्प करते रहते हैं, महाराज के पास जाएगा तो दीक्षा लेगा। दीक्षा लेगा क्या आपका बिगड़ जाएगा, आपका भी कल्याण करेगा। आप अंत समय में कहां जाओगे मरने के लिए, किसी संयमी गुरु के पास जाओगे या कहां जाओगे? घर में मरने से तो मोह छूटने वाला नहीं है, सदगति होने वाली नहीं है। अंत समय में सहयोग देने वाले कौन है? गुरु है। और आपका बच्चा ही गुरु बन गया तो आप उनके पास जा सकते हैं, महाराज हम तो दीक्षा नहीं ले पाए, हमने आपको संस्कार डाला बचपन से, आप महाराज बन गए, हम मोही बन करके रहे, अब हमारा संलेखना मरण कराओ। कराएंगे कि नहीं? वो अहो भाग्य समझेंगे वो, मेरे वजह से ये माता पिता दोनों भाग्यशाली बन गए। अगर बच्चा दीक्षा नहीं लेता तो आपको संलेखना के भाव जगते क्या? देखो आचार्य श्री का परिवार सभी पार हो गए, माता पिता, माँ आरिका बन गई, पिता मुनि बन गए, 2 भाई मुनि बन गए, 2 बहनें आरिका बन गई, घर खाली। आप डरते क्यों हैं? संसार में फंसना और फंसाना ये आपका धंधा बन गया है। फंसना और फंसाना। जैसे जंगल में चोर होते हैं ना, डाकू लोग छिपके रहते हैं वहां, इस रास्ते से कोई गुजर रहा हो तो उनको फंसाना और जंगल में फंसे रहना, यही काम रहता उनका। संसार एक जंगल है, इसमें खुद को भी पार होना है और अपने परिवार को भी पार कराना है। ये सद्भावना रखो। ये अज्ञानता है कि हमारे घर में कोई दीक्षा न ले, भयभीत होना, विकल्पित होना, चिंतित होना, बहुत बड़ी अज्ञानता है। ये संसार, ये पदार्थ, ये धन, ये संपत्ति क्या साथ आने वाला है? छोड़ करके जाती कि नहीं? जाने वालों को देखो, अगर विश्वास ना हो तो कि वो ले जा रहे हैं क्या छोड़ के जा रहे हैं, साक्षात देखो एक बार। और फिर भी विश्वास नहीं होता तो स्मशान में जाकर के देखो कि वहां पर कुछ लाए हैं क्या ये? यह मरण कब कैसा होगा, किस समय होगा, कोई भरोसा है? और आपको बनना क्या है? धार्मिक बनना है क्या ऐसे ही रहना है? धार्मिक बनना है, धार्मिक बनकर के मरण करो, सर्वश्रेष्ठ है। छोड़ो विकल्प, मोह की बातें, झंझट की बातें। हाँ, बीसा गर्म हो रहा है। हाँ, तो समझ में आया ना? रेडी रहो, अप टू डेट। गुरुओं के वचनों को सुनकर, इधर से सुनकर इधर छोड़ना नहीं, उसमें से खोदना, खोद करके पाना, पा करके खुद खुदा बनना। पकड़ो, पकड़ने में सुख है और नहीं पकड़ेंगे तो बहुत दुख है। श्रावक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक, साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक किस गुणस्थान वाला कहलाता है? चौथा गुणस्थान वाला। पहले गुणस्थान में कोई सा श्रावक नहीं, वो तो सम्यक तो रहित गृहस्थ कहलाता है। पाक्षिक श्रावक चौथा गुणस्थान वाला, नैष्ठिक श्रावक पांचवा गुणस्थान वाला, और साधक श्रावक हाँ सीढ़ी मत चढ़ो, पांचवा गुणस्थान वाला। सिर्फ इतना ही अंतर है कि नैष्ठिक श्रावक प्रतिमाओं का पालन करते करते जीवन संयम पूर्वक बिताने वाला कहलाता है, और लास्ट में जब मरण का काल आता है तो संलेखना की तैयारी करता है। संलेखना की तैयारी करके संलेखना का संकल्प लेता है। यदि संलेखना का संकल्प देव शास्त्र गुरु को साक्षी बनाकर ले चुका है तो वह साधक श्रावक के रूप में कन्वर्ट हो गया। जिस दिन हमारे पास संलेखना व्रत आएगा उस दिन हम नैष्ठिक नहीं कहलाएंगे, साधक श्रावक कहलाएंगे। साधक क्यों कहा? मरण को साधने वाले होते हैं इसलिए साधक। संलेखना व्रत को साधने वाले होने से अभी तक तो प्रतिमाओं को साध लिया है, निष्ठा के साथ साध लिया है, इसलिए नैष्ठिक। अब किसको साधना? अब संलेखना व्रत को साधना है। व्रत को लेने से पहले वो नैष्ठिक रहता है और संलेखना व्रत को लेने के बाद वह साधक हो जाता है, साधक कहलाता है। तो श्रावक के ये तीन भेद हैं। हाँ ठीक है, देखो हार्ट फेल हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, कैसा भी हो जाए, संलेखना व्रत अगर ले चुका है, संकल्प कर चुका है, तो मरण कैसा भी हो इससे कोई संबंध नहीं रखता। कारण कोई सा भी आ जाए, कोई रोग आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए और कोई उपसर्ग हो जाए, तो भी उसका संलेखना मरण होगा ही होगा। सिर्फ इतना ही है, हाँ सिर्फ इतना ही है, इतना ही है कि वह नैष्ठिक श्रावक की बात बता रहा हूं। नैष्ठिक श्रावक अंत में संलेखना कर चुका है, ले चुका है, और बाद में एकाएकी भी मरण हो जाए, कैसा भी हो जाए, तो भी वो सक्सेस ही माना जाएगा। संलेखना बिगड़ गया ऐसा होने से, या इसमें कॉमा में गया, मान लो कॉमा में होकर के मरण किया, तो किया क्या? आयु कर्म का गारंटी नहीं होगा, आयु कर्म तो खत्म होने वाला ही होता है, तभी संलेखना ली जाती है, उससे पहला लिया नहीं जाता। देखो संलेखना चार कारणों से लिया जाना चाहिए। एक, भयंकर असाध्य रोग होने पर, जिसको ठीक नहीं कर सकते, अब उसका कोई उपाय समझ में नहीं आता है, तो संलेखना लेनी चाहिए। उपसर्ग आया है और उस उपसर्ग को भी टलने वाला उपसर्ग नहीं लगता है, तो लेना चाहिए, टलने वाला हो तो नहीं है। अच्छा, और दुर्भिक्ष पड़ने पर, ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि अन्न मिलना दुर्लभ हो गया, अन्न मिल नहीं रहा है, तो संलेखना लेना चाहिए। वृद्धाप्य आने पर, वृद्धावस्था आने पर संलेखना लेना चाहिए। वृद्धावस्था में तो अब चलना उठना बंद हो रहा है, उस समय में संलेखना लेनी चाहिए। संलेखना के ये चार लक्षण आवश्यक हैं, अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति संलेखना नहीं लेता, किसी से परेशान होकर पीड़ित होकर मैं घर छोड़ूं, ये तो कुछ साथ नहीं देते, मैं तो संलेखना लेता हूं, ऐसा नहीं चलता। ये कषाय संलेखना हो जाए, कषाय कषाय सकषाय मरण हो जाएगा। ये संलेखना का तात्पर्य किसी के साथ वैरभाव नहीं, किसी का विकल्प मन में नहीं, किसी के वस्तु के प्रति मोह भाव नहीं, कोई वस्तु मेरा तेरा, ये करना था वो करना था, ऐसे विकल्प रहते नहीं, उसको संलेखना कहते। संलेखना के टाइम में अपनी चाबी को सौंपेगा क्या नहीं? अपनी चाबी अपने बच्चों को सौंपना पड़ेगा क्या नहीं? मरण से कितने ही दिन पहले ही इससे मुक्त होना चाहिए। हाँ, जब तक आप होश में हैं, बहुत स्वस्थ हैं, उसी टाइम में संभल जाना चाहिए, तो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता। घर की चाबी को ज्यादा समय तक जेब में नहीं रखना चाहिए, उसकी आवाज आती है बार बार। हाँ, संलेखना ले रहे हैं और इधर करवट लेते समय खुटुक छड़क, तो बाहर से आने वाले वो पूछेंगे जेब में क्या आवाज आ रही है? तो चाबी है। किसकी चाबी? घर की चाबी, अभी तक नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मोह नहीं चाहिए। नहीं, गलत बात है। देहदान का विधान व्रतियों के लिए नहीं है, व्रतियों के लिए, सम्यक दृष्टियों के लिए, धर्मात्माओं के लिए नहीं है। अन्य लोगों की बात अलग है, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखो, मंदिर आप बांधते हैं, सुनो सुनो, मंदिर आप बांधते हैं, उसमें पत्थर ईंट सभी सामग्री लगी हुई है, पत्थर से बना हुआ मंदिर है। अब इस गांव को छोड़कर परगांव जा रहे हैं और मंदिर भी पुराना हो गया है, और यहाँ पर मंदिर निकालने का ही प्रश्न आ रहा है, तो उस मंदिर को बेचा जा सकता है? नहीं, जीर्णोद्धार तो करना हो तो कर ही लेते हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि उस मंदिर के ईंट पत्थर को बेचा जा सकता है क्या? नहीं, बिक तो सकते हैं, लेकिन बेचा जा सकता है क्या? आएगा ही नहीं। ऐसा ही मैं कह रहा हूं, इस देह में रहने वाली आत्मा में जब सम्यक दर्शन आता है तो देह मंदिर बन जाता, पवित्र हो गया वो। और इसको किसी के लिए डोनेट करोगे? ये पवित्र बनता है, ये मंदिर कहलाता है, इसको डोनेट नहीं किया जाता किसी को। हाँ, वो मंदिर बेचे जा सकते हैं, मंदिर यानी घर, हाँ मंदिर घर का भी नाम है, वो घर बेचे जा सकते हैं जो आप रहते थे और छोड़ के जा रहे हैं, उस घर को बेचा जा सकता है। वो तो सांसारिक घर है, सांसारिक घर को दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है, परंतु जिसमें रह करके हम साक्षात दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कर चुके हैं, उसको कभी भी डोनेट करने का प्रश्न ही नहीं आता, अभिनय होता है ऐसा करने से, एक वृत्ति का, एक धर्म का अवमान होगा। ये डोनेट करने का वस्तु नहीं। डोनेट क्या करना चाहिए? डोनेट यानी दान, क्या करना चाहिए? चार प्रकार का ही बताया, आहार दान, औषधि दान, आवास दान और उपकरण दान, ये चार दान ही शास्त्रों में आप लोगों को करने के लिए बताया है। अन्य दान का कोई विधान नहीं है। शास्त्र यानी श्रावकाचार, श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावकाचार धर्म का ही वर्णन आएगा और श्रावक को यानी धर्मात्मा को कितने प्रकार के दान करना चाहिए, क्या डोनेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यही आएगा। तो सतपात्र के लिए चार प्रकार के दानों का विधान आता है, आहार दान, औषधि दान, आवास दान, उपकरण दान। उपकरण दान में पिंछी, कमंडलू इत्यादि। और सतपात्र यानी तीन प्रकार के सतपात्र होते, एक जगन पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र, ये तीनों ही सतपात्र कहलाते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक को जगन सुपात्र माना है, ये भी सतपात्र है। प्रतिमाधारी श्रावकों को मध्यम सुपात्र माना है, ये भी सतपात्र हैं। और मुनियों को तो उत्तम पात्र माना है, वो भी सतपात्र हैं। केवल मुनियों को ही सतपात्र माना ऐसा नहीं, ये चार प्रकार के जो दान हैं उत्तम पात्र को ही करेंगे क्या? उपकरण दान यानी पिंची, कमंडलू, शास्त्र ऐसा लेते हैं आप, ठीक है, उत्तम पात्र की अपेक्षा से उपकरण दान यही है। लेकिन एक कोई श्रावक है, पाक्षिक श्रावक, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, तो उनके लिए उपकरण के दृष्टि से क्या दोगे आप? पिंची कमंडलू तो लेंगे नहीं वो, तो शास्त्र दे सकते हैं, औषध दे सकते हैं, औषध दान अलग ही है, तो औषधि दान भी दिया जा सकता है। उपकरण दान में क्या दोगे? शास्त्रोपकरण दोगे। और क्या दोगे? क्या केवल शास्त्र ही देते बैठोगे? वस्त्र भी दे सकते हैं, वस्त्र देना भी सतपात्र दान है। हालांकि ये परिग्रह है, वस्त्र परिग्रह को ही आप दे रहे हैं, लेकिन दान की कोटी में आ रहा है। यही परिग्रह आप उत्तम पात्र के लिए देंगे तो कुपात्र दान नहीं, कुदान कहलाएगा, कुदान कहलाएगा। किसको क्या देना चाहिए, यहां पर विवेक है। श्रावक को क्या दें? वस्त्र दें, औषधि दें, उसको जीवन जीने के लिए कोई धन की कमी है तो उस कमी को पूर्ति कर दें, ये सहयोग कहलाता है, सतपात्र के लिए दान कहलाता है। तो ये चीजें डोनेट करने के लिए योग्य हैं, जिसको जो डोनेट नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए सतपात्र के लिए। अच्छा, आप डोनेट करते हैं अंग को, डोनेट करते हैं रक्त को, डोनेट करते हैं बॉडी को, तो ये बॉडी वो ले जाते हैं पहले से लिखित रूप से, आप हाँ साइन कर देते हैं और मरण के पश्चात तुरंत आ जाते हैं वो, और आंख निकाला जाएगा। देखो, वृत्ति के मरण पर, मरने के उपरांत तो विमान में बिठा करके उत्सव किया जाता है, आंख निकाल करके उत्सव करेंगे? देखो, ये धर्मात्मा का शरीर डोनेट के लायक नहीं, क्योंकि वो उनका वियोग का मतलब एक धर्मात्मा का वियोग, एक अभाव। हाँ, ये तो है ही, जैसा आए हैं वैसा ही जाना चाहिए, टोटल सार बात है ये, जैसा आए हैं वैसा ही जाना चाहिए, कोई डोनेट मत करो। सम्यक दृष्टि हो और देखो, वही तो बता रहे ना, सम्यक दृष्टि रक्तदान करेगा क्या? हाँ, नियम सार है वो, रक्तदान करेगा क्या? पंचम गुणस्थान वर्ती रक्तदान, शरीर दान डोनेट करेगा क्या? नहीं करेगा। धर्मात्मा का ये कार्य नहीं है, जो धर्मात्मा नहीं है। हाँ करो, लेकिन पहले गुणस्थान में दूसरे में तीसरे में हो तो करो, वहां पर कोई धर्म का संबंध नहीं आता। हाँ बिल्कुल, करुणादान देव, रक्त देना पड़े तो देव, लेकिन धर्म के तरफ से जरा विचार करो कि दे सकता हूं क्या नहीं, पात्र हूं क्या अपात्र, मैं खुद क्या हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरे पास व्रत कौन से हैं, देना उचित या अनुचित, ये नहीं सोचेंगे? सोचेंगे ना। और धर्मात्मा अगर मरण कर रहा हो तो जहां तक सवाल है कि धर्मात्मा पर हम, क्योंकि धर्मात्मा को बचाना चाहते हैं, तो धर्मात्मा को इस प्रकार के डोनेट से तो बचाया नहीं जाता। और जिसको आप बचा रहे हैं उनका गुणस्थान या तो पहला दूसरा तीसरा रहेगा, तो उसको बचाने के लिए धर्मात्मा का, सम्यक दृष्टि का, नैष्ठिक श्रावक का रक्त या शरीर या अंग ये आवश्यक है क्या? सोचा भी नहीं जाता। मैं सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का शरीर डोनेट में ले लूं, ये सोचेगा भी नहीं। कौन? जो नीचे के गुणस्थान वाला है वो सोचेगा भी नहीं। श्रावक महाराज के आंख के सोचेंगे? महाराज के आंख के बहुत अच्छे हैं, डोनेट में मिल जाए हमको अच्छा होगा। हाँ, गला बिला अच्छा हो तो गला भी लेने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा नहीं सोचा जाता, सोचना अशुभ है। वृत्तियों से हम कुछ लेना ये सोचते हैं तो ये अशुभ है। इतना विवेक तो कम से कम पहले गुणस्थान वालों को रहना चाहिए। हाँ, विवेक नहीं रहता है ना, क्योंकि वो पंचम पहले गुणस्थान में इसलिए है कि वो कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए पहले में है। तो पहले गुणस्थान में रहने वालों पर व्रति बनकर इतना करुणा करने का कोई विधान नहीं है। व्रति व्रति को करना चाहता है तो व्रति को नहीं चलता है वो, तो फिर अव्रति को कैसे देगा? हाँ, व्रति को नहीं चलता, अव्रति तो ले लेगा ना। जब व्रति व्रति को नहीं चलता, वृत्ति का वृत्ति के लिए नहीं चलता कोई शरीर का अंश, तो अवृत्ति के लिए कैसे दे सकते आप वृत्ति बनकर? अवृत्ति को अवृत्ति दे दे, ये बात अलग। पहले गुणस्थान वाले को बचाना हो तो पहले गुणस्थान वाले बचाए, ऊपर न देखे, ऊपर के गुणस्थान वालों को न देखे, क्योंकि वो तो आराध्य हैं आपके लिए, बड़े हैं, धर्मात्मा हैं, आदर्श हैं आपके लिए, आदर्श हैं। पहले गुणस्थान वालों के लिए आदर्श कौन कौन हैं? चतुर्थ गुणस्थान वाले, पंचम गुणस्थान वाले, छठे गुणस्थान, आदर्श हैं। आदर्श की तरफ से ये इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। ये दान संबंधित विवेक है। प्रतिमा, टाइम गया, चार पांच प्रवचन लगेंगे। डिटेल होना भी जरूरी भी है, यही हमारे लिए विवेक नहीं है कि किसको रक्त दें, क्या दें कि नहीं दें, दे मालूम नहीं है। बेसिक ध्यान बढ़ेगा और बेसिक, हाँ अभी मतलब गड़बड़ में प्रतिमा ले लिया और कल आपने रक्त डोनेट कर लिया तो हो गए ना काम तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे प्रश्न ये चर्चा की, हाँ मालूम होना चाहिए, सारी बातें मालूम होना चाहिए, होना चाहिए, तभी लिए हुए व्रत विवेक के साथ पालन किए जाएंगे, सफल होंगे वो बिल्कुल। हाँ, वृत्तियों को बोट भी नहीं करना चाहिए। ये देखो अविरत सम्यक दृष्टि का अलग है। अविरत सम्यक दृष्टि करे तो चलेगा, लेकिन वृत्ति को नैष्ठिक श्रावक को बोटिंग नहीं है, निषेध है, क्योंकि वहां वहां पर पक्षपात होता है ना। हाँ, विकल्प आ गया। नहीं, पक्षपात होता है तो पक्षपात के लिए हमारा समर्थन मिलता है। वोटिंग का क्या अर्थ है? हमारा भी समर्थन है इस पक्ष के लिए। कषाय छोड़ा हुआ व्यक्ति वोटिंग करेगा तो पक्षपाती बनेगा कि नहीं? है ही नहीं। हाँ, वो कुदान कहलाएगा। वृत्ति के लिए तो वो कुदान है, क्योंकि जिससे कषाएं बढ़ती है, पक्षपात का संबंध है जिसमें, वो वोटिंग वगैरह नहीं करेगा। और ऐसे रहते भी कितने ऐसे तो 27 ही नक्षत्र रहते हैं। ये तारे नहीं है, तारे तो असंख्यात हैं, नक्षत्र तो 27 हैं। इनका वोटिंग लेकर के वो करेंगे क्या? और वोटिंग करना अविवेक है, नहीं कर सकता। अविरत सम्यक दृष्टि बात अलग है, क्योंकि वह देखो युद्ध भी लड़ता है। चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर के भी षटखंड आगम विजयी होने के लिए युद्ध पर निकले, विजय पर निकले, तो इनकी बात अलग है। ये वोटिंग कर सकते हैं, युद्ध में भाग ले सकते हैं, सेना में भर्ती हो सकते हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन अनुवृत्ति को नहीं। दूसरी बात सुनो, अनुवृत्ति को नहीं। अनुवृत्ति त्रस हिंसा का त्यागी, ठीक है, त्रस हिंसा का त्यागी। और युद्ध में भाग लेगा, सेना में भर्ती होगा, तो कौन से जीवों को मारना पड़ेगा वहां? पंचेंद्र जीव को। त्रस हिंसा का त्यागी जा सकता है क्या मिलिट्री में? नहीं जा सकता, क्योंकि त्रस हिंसा का त्याग है, उसमें समता भाव धारण कर चुका है। कोई भी जीव, मेरे शत्रु भी वो मित्र ही हैं, त्रस की अपेक्षा से ये संकल्प है, त्रस की अपेक्षा से यह संकल्प कर चुका है वो, फिर कैसे वो यो करेगा? ये वोटिंग नहीं कर सकता, मिलिट्री में नहीं जा सकता, ये काम नहीं कर सकता है। ये पंचम गुणस्थान वर्ती लड़ाई नहीं करता, उसकी कषाय काल मर्यादा कितनी है? 15 दिन। फिर नहीं कर सकता। मुनि महाराज मुनि महाराज तो मुनि महाराज है, वो मिलिट्री में जाएंगे क्या? जिसको धरती से मतलब नहीं रहा, परिग्रह से मतलब नहीं रहा, चेतन अचेतन वस्तुओं से मोह नहीं रहा, उनके लिए कोई भी न मिलिट्री है न वोटिंग है, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, कहीं नहीं जाएगा। जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, पर हम काम नहीं करेंगे वहां, ऐसे ही बैठेंगे। और ले जाकर करोगे क्या? उपसर्ग समझेंगे वो, इतना ही होगा। जो हमारे व्रतों के लिए लायक काम नहीं है वहां ले जा रहे हैं, करवाना चाहते हैं, तो उपसर्ग आया ये समझेंगे। हाँ, हाँ, पानी पानी के संबंध में जरा समझ लो। जिनको लेना है ये स्वरूप समझना हो तो 4-5 दिन रुको। देखो 27 नक्षत्र कैसे हैं, जगमगाने वाले हैं कि नहीं? देखो नीचे चौथे गुणस्थान वाले व्यवस्था करने को तैयार है। अब प्रतिमा ही ले रहे हैं तो क्या मोह उधर का? और 5 दिन का मोह छोड़ करके रहें, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आप लेने के बाद क्या करेंगे? थोड़ा सा बेसिक भी हो और समझना बहुत आवश्यक है ये क्या। हाँ ठीक है, अब पानी के संबंध में देखो थोड़ा सा बता करके, शेष विषय प्रतिमाओं का स्वरूप कल समझाएंगे, 12 अनुवृतों का। आज पानी के संबंध में, प्रतिमाधारी को पानी सबसे पहला छानने के लिए आना चाहिए, क्योंकि पानी में त्रस जीव रहते हैं। त्रस हिंसा का जो त्याग है उसका संकल्प आप लेने वाले होते हैं अनुवृतों में, तो भोजन पकाने के लिए और पीने के लिए जब भी पिएंगे और भोजन पकाएंगे, इन दो कामों में तो वस्त्र वगैरह धोना, स्नान करना, इसका इसकी बात अलग है, किंतु आप जीव दया कम से कम भोजन के क्षेत्र में तो करेंगे ही, क्योंकि उसमें त्रस जीव हैं। त्रस जीव को नहीं बचाएंगे तो अहिंसा अनुवृत्त की रक्षा नहीं होगी। और वस्त्र धोना है, स्नान करना है, इत्यादि कामों में भी जो आप ले रहे हैं, कम से कम छान करके ले, और जहाँ से ले रहे हैं उन जीवों को वहीं पर छोड़ दो, ये बहुत अच्छा है, इसके लिए भी करते हैं तो। लेकिन ये नहीं भी करते हैं तो भोजन के लिए तो कंपल्सरी करना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि उसी भोजन में यदि कोई उत्तम पात्र आ गए तो दान भी देने वाले हो ना, तो फिर हिंसा से उत्पन्न जीवाणी को नहीं किया है, जीव रक्षा नहीं की, उन वो मर गए है, और उस आहार को यदि मुनि के हाथ में देना हो, दे दिया, तो कैसा लगेगा? ये दोषपूर्ण आहार है। तो जीवों को छानना बहुत आवश्यक कहलाता है। और कैसे छानना? जहां से लिया है, देखो लेने के स्थान कौन कौन से, कुआं हो लिया जा सकता है, बोर हो और उसमें मशीन ना हो और डोरी छोड़ करके कोई पात्र उसमें बांध के छोड़ करके निकालते हैं और सुरक्षित रूप से उसमें जीवों को छोड़ने का कोई साधन हो तो उस पानी को भी लिया जा सकता है। लेकिन मशीन से खींचा हुआ पानी छान करके आप ले गए तो जीवों की रक्षा हुई क्या? मशीन कितनी जोर से घूमता है, उसमें सब द्विइंद्रिय जीव कटपिट जाते हैं, वो चूर चूर हो जाते हैं, उनका शरीर बचता ही नहीं। तो उसको छानने से क्या मतलब? जीवित जीवों को छानना है कि मरे हुए शवों को छानना है? वो तो शव आ रहे हैं, तो शवों को छानने से कोई मतलब नहीं रहा, दया नहीं है ये। तो बोर में क्या नहीं होना चाहिए? मशीन नहीं होना चाहिए। और कोई ऐसा पानी को निकालने का साधन बनाया जाता है, पाइप टाइप का रहता है वो पात्र, और उससे निकाला जाता है, निकाल करके जितना पानी लेना है छान करके कपड़े में से ले लिया और उस कपड़े के जीवों को लास्ट में सभी जितना पानी निकालना था निकाल लिया, लास्ट में कपड़े में जो जीवाणु बचे हैं उनको क्या करें, उसी पात्र में जो खींचते हैं ना, उसी पात्र में रखें और उसको डोरी नीचे छोड़ें और ऊपर ऐसा ही बांध ले उसको, वो पानी में रहेंगे, दूसरे दिन तक वहीं रहेंगे, वो उस पात्र को बाहर निकालना ही नहीं, पानी से अलग रखना ही नहीं, उसको वैसे ही छोड़ के रखना पानी में डुबो करके। हाँ, उस जीवाणुओं के जीवाणुओं को छोड़ दिया, डूब गया वो, डूबने के उपरांत उसको निकालना नहीं, वहीं रहेंगे वो। दूसरे दिन जब आप आते हैं पानी भरने के लिए, सुनो, दूसरे दिन फिर आप पानी भरने के लिए आते हैं तो उससे खींचना, छानना और फिर लास्ट में फिर वैसा ही करना, उसमें जीवाणु छोड़ना और उसको नीचे छोड़कर पानी में डूबने के बाद ऊपर बांध लेना इसी रस्सी को, उसको निकालना नहीं। एक ये विधि जीव रक्षा की, जीव रक्षा की ये विधि। कुएं में हो तो कुएं में तो ऐसे छोड़ करके रखने की कोई जरूरत नहीं, कुएं में तो छान लिया, वहीं छान लिया, वहीं जीवों को वहीं छोड़ दिया, उतर करके लेना हो तो। और यदि ऊपर से खींच करके लेना पड़ता है और नीचे जीवाणुओं को छोड़ना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति हो तो बाल्टी को एक कड़ी लगाना चाहिए नीचे, एक ऊपर बाल्टी को बांधने की रस्सी होती ऊपर तक जाती है और कड़ी की भी एक रस्सी जो होती वो भी ऊपर तक जाती है। जब आप जीवाणुओं को बाल्टी में यहाँ रखेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे और वहां छोड़ने के बाद कड़ी की रस्सी को खींचेंगे तो वो पानी उसमें गिर जाएगा। तो इस तरह से जीवाणुओं की रक्षा होती है, ऐसा छान करके करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ऐसा कोई हमारे पास कुआं नहीं है या बोर भी निकालते हैं तो उसमें मीठा पानी नहीं निकलता है, तो खारा पानी पी करके शरीर बिगाड़ना नहीं, वृत्ति तो स्वस्थ रहना चाहिए ना धर्म साधना के लिए। तो पानी अगर खारा होता है तो वो कुआं भी काम का नहीं और वह बोरिंग भी काम का नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा पानी का उपयोग करें? तो बारिश के पानी को आप संग्रह कर सकते हैं। खूब बड़ा एक गड्ढा खोदें या तो एक बड़ा टैंक रखें, 5-6 हजार 10 हजार लीटर का एक टैंक, अधिक से अधिक बड़ा हो, 2000 का 4000 का 5000 का आते हैं ना, उस टंकी में छत के पानी को बरसात के दिनों में संग्रहित करना चाहिए। ये तो बरसात में तो हो सकता है, लेकिन अन्य टाइम में थोड़ा वहीं बैठो, अभी अभी भी बरसात के पानी को बरसात के दिन में तो उपयोग में लाया जा सकता है। उनको भी कैसे, बरसात गिरते समय उसको पकड़ लिया, कैसे पकड़ना, छत को पाइपलाइन करके जैसे यहाँ किया है, पूरा यहाँ तक ला करके छोड़ा और वो पानी बाहर जा रहा है, वैसे ये छत का गिरता हुआ पानी अगर आप स्टॉक करेंगे टंकी में या अंडरग्राउंड में, अच्छा एक अंडरग्राउंड बना करके भी किया जा सकता है और टंकियों का भी उपयोग लिया जा सकता है, तो वो भर जाएगा, तो भर जाएगा तो महीना डेढ़ महीना तो चलेगा, वो आगे क्या करें, समस्या आएगी। तो आगे क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर कुएं हैं, हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो कुआं और वहाँ पर पानी मीठा है, मीठे पानी का ही उपयोग करना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, खारा पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है उस पानी का उपयोग वृत्ति को नहीं करना चाहिए। तो क्या करें, 8-10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो मीठा पानी मिल सकता है, मिल सकता है, इनके मिल सकता है, ढूंढने पर मिल सकता है, ऐसी संभावना हो तो वहाँ पर ट्रैक्टर से टंकी भर करके आप एक साथ एक टैंक ला सकते हैं और घर में उसको स्टॉक कर सकते हैं और महीनों तक वह पानी चलेगा। करना कैसे पड़ेगा, वहाँ पर जाएं कुएं पर और उस ट्रैक्टर के टैंक को कपड़ा बांधे पानी डालने के लिए, तो कपड़ा बांधकर उसमें बाल्टी से भरें, छान करके आ जाएगा वो पानी, तो उन जीवाणुओं को उसी कुएं में छोड़े और एक टैंक पानी को अपने घर में लाएं और अपने बड़े बड़े टैंकों को भराएं उससे, सेप्टिक टैंक, सिंटेक्स टैंक आते हैं ना, उसको भर करके रखें और उनका उपयोग आप महीनों तक कर सकते हैं। अब जीवाणु जो प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं, प्रतिदिन उत्पन्न होते रहते हैं, उनको छान करके आप घड़े में ले लें और उन कपड़े के जीवाणुओं को उसी टंकी में धीरे से छोड़ दें, तो इस प्रकार भी किया जा सकता है। दूसरी बात, ये सभी करने के लिए घर में नियम से बड़े बड़े टंकियों को रखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ये होगा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत गलत करते हैं, छोटे छोटे 8-8, 10-10 लीटर के पात्र भर करके रख देते हैं और उसको छान लेते हैं 10 लीटर पानी और उसको जीवाणु अलग रखते हैं और उसको ले जा करके कुएं में पहुंचा देते हैं। ये गलत है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर नए जो जीव यहाँ पर इस वातावरण में उत्पन्न हो गए उनको भी छाना, और वो यहाँ पर ही जीवित रहने लायक थे, दूसरी जगह जाकर के उसको कुएं में या बोर में छोड़ेंगे वो जीवित रह ही नहीं सकेंगे, उनका मरण हो जाता है। हाँ, नदी का पानी जो है ना, आजकल बहुत कम नदियां ऐसी रह गई जो पवित्र हों, सारी नदियां, कृष्णा नदी काम की नहीं, वेदगंगा, ये कौन सा पंचगंगा नदी काम की नहीं, ये बिल्कुल प्रदूषित पानी है, इसको तो वृत्ति को पीना ही नहीं चाहिए, बहुत गंदा है, सभी सिटी का गटर वहां जाकर के बड़े बड़े गटर मिल रहे हैं, क्या वृत्ति पिए इसको, ये अभिषेक में भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए ये इस पानी को जो नदी का है, कितना गंदा है, सारे संडास जा रहे हैं उसमें, सारे सेप्टिक टैंक जा रहे हैं उसमें, कई फैक्ट्रियों का जो है केमिकल उसमें आ रहा है और सारे खेतों का जो धुल करके वो फर्टिलाइजर है वो बरसात के दिनों में जा करके वहीं मिलता है। नदी तो अत्यंत प्रदूषित है, पीने के लिए पानी जरूर मीठा है नदी का, लेकिन प्रदूषण की अपेक्षा से पवित्रता की दृष्टिकोण से देखें तो नदी का पानी बिल्कुल अपवित्र है, उपयोगी नहीं है। अच्छा नदी का तो कट ही है, अब सोचना ये कि बरसात के पानी को स्टॉक करें या तो महीने डेढ़ महीने में एक बार ट्रैक्टर से कहीं से भी दूर से पानी ला करके अपने घर में रखें और उसके जीवाणु को उसी में छान करके छोड़ें, और ऐसा डेढ़ महीने तक छः महीने तक चलने लायक पानी स्टॉक करेंगे। बोले नहीं, बोलो नहीं, सुनो। फिर बाद में पूछते हैं तो वही प्रश्न रहता है, ध्यान से सुनो। टैंक बड़े बड़े बना लिया, जितना बड़ा बनाओगे उतना लाभदायक है, छोटे छोटे रखो कोई काम का नहीं, उसमें हिंसा होगी। आप सोचेंगे इन जीवाणुओं को जा करके हम कुएं में छोड़ेंगे, नहीं मरेंगे वो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बड़े टंकी बनाओ और उसमें स्टॉक करो, महीने छः महीने में, दो महीने में, तीन महीने, जितने महीने में जब खत्म हो गए तो पानी को एक साथ लाया उसमें रख दिया छान करके, और जीवाणुओं को रोज उसी में छानना और उसी में छोड़ना। इस प्रकार करेंगे तो यहाँ के जीवाणु इस टंकी में जीवित रह सकते हैं, प्रतिक्षण जो उत्पन्न हो रहे हैं उनका अकाल मरण नहीं होगा। हाँ, लास्ट में जो थोड़ा बचता है उसको एकाध बार कभी उसको वो करना पड़ता है, प्रतिदिन हिंसा नहीं होगी, कभी छः महीने में एक बार, क्योंकि आरंभी हिंसा का त्याग तो आपको है ही नहीं। ये त्याग कब? आठवीं प्रतिमा में आरंभी हिंसा का त्याग, आरंभ सारंभ तो करता ही है दूसरी प्रतिमाधारी। नहीं नहीं गलत है, वो कुएं में छोड़ो ना छोड़ो बराबर ही है, मरेंगे वहां। हाँ हाँ, तो गर्म किया उबला हुआ पानी को बताया है 24 घंटा चलेगा, आप यात्रा में हैं तो उबला हुआ पानी ले जा सकते हैं, 24 घंटे तक पी सकते हैं उसको, 24 घंटा मर्यादा है। हाँ, और साधारण गर्म किया हुआ 12 घंटा चलता है, और छना हुआ पानी 48 मिनट तक चलता है, लेकिन वो प्रासुक नहीं। अगर चौथी प्रतिमा पांचवी प्रतिमा ली है, सचित त्याग प्रतिमा अगर ली है, तो 48 मिनट का छना हुआ पानी भी नहीं चलेगा, गर्म करके ही आपको पीने का नियम होगा पांचवी प्रतिमा में। हाँ, क्या पूछ रहे? हाँ, पानी उबालते हैं? नहीं, पानी जो उबालते हैं हम एकेंद्री जीवों की अपेक्षा से नहीं देख रहे हैं, त्रस जीवों को बचा रहे हैं। एकेंद्री जीवों को बचाना संभव नहीं है, उसमें दो प्रकार के जीव हैं, जल ही जीव है वो एकेंद्री है, पर जल में तैरने वाले छोटे छोटे जो जीव उत्पन्न हो गए हैं शरीरधारी, वो अलग, उनका अस्तित्व अलग है, उनको त्रस कहते हैं, उनको छानना है, उन पर दया करना है अपने को। श्रावक धर्म त्रस जीवों के त्याग के लिए है, स्थावर के लिए नहीं। हाँ हाँ, 10 लीटर, हाँ, बासी किसी का सवाल यहाँ नहीं है, कुएं में सालों का रहता है, बासी रहता है क्या, कैसा रहता है, ताजा कैसे रहता है, सालों का है। हाँ, देखो प्रवाह चलता है, इस अपेक्षा से आप ताजा बोल रहे हैं, वो भी ताजा नहीं है, प्रवाह में रहता, कुएं में देखो सभी जीव जंतु रहते ही है। हाँ? नया पानी आता है, निकालेंगे तो नया आता है, नहीं निकालेंगे तो वो वैसा ही रहता है कि नहीं, फिर वो ताजा कहाँ है? ताजा पिज्जा का सवाल नहीं है, पानी पानी है, उसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। सिर्फ इतना है कि गर्म किया हुआ पानी 24 घंटे के अंदर आप उपयोग कर लो, इस अपेक्षा से कि उसमें पुनः जीव उत्पन्न नहीं हुए रहते हैं इसलिए। हाँ, बहुत टाइम हो गया, 5:45 हो, तो यह उसको दिखाना था ना, 5 मिनट में वो विधि दिखाते हैं, थोड़ा सा बैठो 5 मिनट। आई ये देखो कैसे छानना चाहिए, ये बोर में छोड़कर निकालने वाला पात्र है वो, ऊपर ऊपर आओ, ऊपर ऊपर आओ। ये पात्रों का परिचय बताओ पहले, ये क्या है, कहाँ उपयोग करते हैं। नहीं सुनाई नहीं देगा, फिर पीछे तक बैठे।
हेलो, ये बाल्टी बोर में से पानी निकालने के लिए बनाई गई है। इसमें जीवाणु जैसे विधिवत छोड़ी जा सकती है वो व्यवस्था की गई है। ये स्टील का है, पाइप है, ये
कुएं में या उसमें प्रयोग करते हैं इसका?
बोर में,
बोर में। हाँ,
हाँ बोर में जो है इसका उपयोग है। नीचे एक वाल लगा हुआ है, ये वाल अलग तरीके से बनाया है जिसमें जो है नीचे जाकर छोड़ते हैं, और वाल में ये नीचे जाने के बाद ये डोरी है, ये डोरी जैसे ऊपर जरा सा खींचते हैं तो पानी के तलहटी पर, डेमोस्ट्रेशन देंगे बाद में, यह पानी जो छाना हुआ है यानी जीवाणु है अनछना पानी, वो तलहटी में जाकर पानी में मिक्स हो जाता है, यानी जीवों की रक्षा हो जाती है। ये कैसे होगा ये अपन बताते हैं। अभी इसके साथ एक ये पात्र है, सामान्य से अपन पानी छानते हैं तो क्या होता है, कपड़ा हमारा छोटा होता है और जिस कलसी में निकालना है उस पर ही रखते हैं, और रखते समय पानी या कपड़ा इधर हो जाता है, उधर खसक जाता है, थोड़ा अनछना पानी कलसी में जाता ही है। ऐसी व्यवस्था न हो, ऐसा अनछना पानी न जाए, ये पात्र बनाया है। इसमें कैसे है खोल के दिखाएंगे। ये कपड़ा रहता है, इस कपड़े की साइज भी ऐसी होनी चाहिए कि हम बाकायदा यहाँ गांठ लगा सकें, और ये हमने थोड़ा भी नहीं बनाया, ये जो है नीचे तक रहना चाहिए। जब पानी छान रहे हैं तो छना हुआ पानी, वो जीव जो है पानी में ही रहें, तैरते रहें, ताकि अपन जो है ये सब व्यवस्था कर सकें। कपड़े का भी बताया है, हमें सैंपल लिखे थे तो कपड़े का तो यह बताया हुआ है। कपड़ा कैसा होना चाहिए, कपड़ा मोटा होना चाहिए, ये तो इतना अधिक मोटा नहीं, इससे भी होना चाहिए ज्यादा, और डबल लगाना चाहिए। ये ऐसे डबल किया, डबल करने के बाद ये पात्र है, इसमें देखिए ये है, और यहाँ पर ये बेल्ट कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी रहता है छानने के बाद, छानने के बाद थोड़ा रहता है, और वो जो है जीवाणु छोड़ने के लिए, वापस कलसी में से पानी ले और फिर जीवाणु छोड़े गलत होता है, तो इसमें ही रहता है। और फिर जो है करने के बाद दूसरा सा अलग पात्र लेते हैं और इसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं, यानी हमेशा इसमें पानी रहता है, जीवाणु छोड़ने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से पात्र है। हम क्या करते हैं, ये लिया
ऐसा बांधना चाहिए, बांधने की तरीका भी सीखना पड़ेगा। हाँ
ना, नीचे जाना चाहिए ताकि यहाँ रहे। अब बस ये हो गया, ये है किसी जगह पर रख लिया, और यहाँ अपनी कलसी रख दी, कलसी रख दी, और पानी इसमें डालते जाएंगे। ये पानी भर के लाए और नहीं ठीक है, ज्यादा नहीं, तो इस तरह से यह
नहीं नहीं वो सब दिखाना पड़ेगा। एक उल्टा रख दो, एक उल्टा रख करके बताओ। हाँ ये ऐसा, ये छानने की विधि ये है।
डेमोस्ट्रेशन है, ये पानी चला गया, यानी वो डेमोस्ट्रेशन निकले आ जाएगा। चल हाँ जी, हाँ
ये निकल जाएगा, वो
नहीं निकलेगा, अभी नहीं निकले।
अच्छा अच्छा, छींचे की तो ही निकले।
देखो पानी भर गया, ये जो है लीकेज नहीं है अभी, इसमें ये लगा हुआ है। इस पानी को नहीं नहीं अनिपा जी, अनिपा जी हे बघा, इतकं पाणी त्यात पात्र मध्ये राहत आहे अजून. हा आता पाणी ह्या बाहेर आहे.
मराठी मी बोलतो
मला हिंदी समजता आहे ना. देखा देखा
अब जीवानी को दिखा दो.
ये पात्र की उपयोगिता आ गई इसमें. जीवानी करेंगे कैसे करते हैं जीवानी बताते. हाँ चलिए. नहीं नहीं हाँ वो सब है ऐसा. वो नहीं चलेगा. हम इसको ही लेते हैं. नहीं छोड़. अब ये जो है इसमें जीवाणु है. अब इसको कैसे लेना है.
वो छने हुए जल से उसको धो रहे हैं. हाँ ये महत्व है. ये जीवाणु बचाने का यही मेन पॉइंट है.
अब जो इसमें जीव थे हाँ, इसमें आ चुके हैं.
इतना कर लिया तो पंचम गुणस्थान हो गया आपका. रोज करोगे तो पांचवा गुणस्थान.
ये पानी हम इसमें डालते हैं.
बिल्कुल जीवाणु वाला पानी.
इसमें भी थोड़े जीव हो सकते हैं.
ये
अब
हाँ देखो
दूसरी बाल्टी रस्सी रहेगी.
पकड़ो.
ये रस्सी है, ये अपन कुएं में छोड़ते हैं, बराबर. अब इसको अपन देख कुएं में नीचे तक जाएगा. एक कुआ है ठीक है. अब देखो अब हम खींच रहे हैं. छोड़ दो बाल्टी छोड़ दो.
हे जीवानी तळात गेल्यानंतर हे असं करायचं आहे. वर्ण करायचं नाही आहे. खाली पाण्यात गेल्यानंतर हे करायचं आहे.
दॅट्स ऑल. ये करने के बाद फिर दूसरी प्रोसेस. ये जो छनम पाणी इसमें था ये वही रहना चाहिए. फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया इस चारों तरफ से. यानी जहां तक संभव है जो जीव है त्रस जीव छोटे छोटे वो अपने स्थान पर पहुंच जाए. ये इसका मुख्य ध्येय है.
हाँ वो उसी स्थान पर पहुंचेंगे तो हम अपने स्थान पर रहेंगे. वो नहीं पहुंचेंगे तो हम गिर जाएंगे. ये है.
एक और कहना है. इस बाल्टी ये बाल्टी है 5 इंच की. इसके लिए बोर का साइज कम से कम 6 इंच 6.5 इंच होना चाहिए. समाज में ऐसा मैंने अनुभव किया है. लोग जो है 4.5 इंच का बोर लगाते हैं और फिर कहते हैं हमको बाल्टी चाहिए. तो 4.5 इंच के बोर में बाल्टी 3 इंच की जा सकती है. 4 इंच का भी मैंने बनाया है लेकिन 4 इंच का उसमें नहीं जाता है. अब हमसे कहते हैं 3 इंच की बना कर दो. हम कहते हैं हम 3 इंच की नहीं बना के देंगे. क्यों ऐसा है. ये सब करने के बाद इसमें यह पानी लगा हुआ है. इसको पोंछ कर रखना चाहिए नहीं तो इसमें भी है जीव उत्पन्न होंगे. तो क्या करते हैं सब प्रोसेस पूरा होने के बाद इस कपड़े से या दूसरा कपड़ा लेते हैं. दूसरा कपड़ा लिखकर ये अंदर से पोंछना चाहिए ऐसे. और 3 इंच का पाइप लेंगे तो उसमें हाथ नहीं जाएगा. ये है इसलिए हम मना करते हैं. लोग हमसे नाराज भी होते हैं कि ये पाइप बनाकर नहीं दे रहे.
वो बरोबर है. उनको मालूम नहीं रहता है.
बहुत लोग नाराज हुए महाराज से कि ये बोलते हैं देते नहीं.
अंदर नहीं जाता.
अंदर हाथ जाते ही नहीं महाराज. 4.5 लीटर 5 लीटर पानी आता है.
5 लीटर आता है. अच्छा
तो एक 4 बाल्टी यह पानी खींचकर एक जन का भोजन बन सकता है.
हाँ
20 लीटर पानी हो गया महाराज जी.
बराबर. उस कितने लीटर लगते हैं रोज. 5 लोग भोजन करना हो कितने लीटर लगते हैं.
5 लोगों के देखिए 2 लोगों के लिए 20 लीटर पांच लोगों के लिए एक दो पांच दस हाँ 30-35 लीटर में काम हो जाएगा मैम जी, पांच लोगों में।
हाँ 35 लीटर पानी चाहिए, यानी कितने बाल्टी?
सात बाल्टी, सात बाल्टी, सात आठ मान लीजिए महाराज जी, ऐसी आठ बाल्टी,
ये आठ आठ बाल्टी ठीक,
यानी पांच आठ 40 अरे 35 लीटर थोड़ा पानी वेस्ट जाएगा, इस तरह से 35 लीटर पानी
से पांच खींचेंगे तो पांच लोग भोजन
आठ
कर सकेंगे,
आठ
लोग
आठ खींचेंगे तो
ठीक है, ठीक ठीक है, एक चौके में सात आठ लोग रहते हैं तो ये ऐसे पांच चाहिए,
आठ
आठ आठ चाहिए,
खींचेंगे तो पांच हो जाएगा।
हाँ तो एक में
पांच लीटर
एक का चलता है,
एक के लिए भी महाराज जी 15 लीटर पानी चाहिए।
हाँ ठीक,
दो बार खींचेंगे तो एक का होता है।
ये बोर के लिए है, कुएं के लिए तो व्यवस्था है, वो बाल्टी असल में कड़ी वाली लानी चाहिए थी, शायद वो प्रोसेस सबको मालूम है, उसमें भी यह ऐसा देखा गया है, क्या करते हैं पानी छानते हैं, जीवाणु बनाते हैं और जीवाणु ऊपर से छोड़ देते हैं, वो बहुत ही गलत है, छाना पानी तो ठीक, नहीं छाना तो ठीक, दोनों बराबर हैं, तो जीवों की हिंसा हो गई। असल में जीव जो है नीचे जाकर ही हमें जीवाणु छोड़नी चाहिए, तो कड़ी लगी हुई बाल्टी ही उपयोग करना चाहिए, और उसकी भी विधि असल में बताना चाहिए था, मान लीजिए हम कल बता देंगे,
कल और बताएंगे
ठीक है। अब जो है किसी ने प्रश्न किया इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है, असल में इसकी लागत कीमत तो जो है 2,500 रुपए है, लेकिन मैंने अभी तक किसी से पैसा नहीं लिया है,
ये दान है, ये सुदान है, यही दान है, प्रतिमाधारियों को आपने ऐसा ऐसी आयतन दे दिया तो ये तो सतपात्र दान है, ये उपकरण दान है, देखो उपकरण दान है, ये संयम पालन का उपकरण है, ये उपकरण दान।
उनको 6 इंची बोर का कितना खर्चा आता है टोटल, एक आईडिया एप्रोक्सीमेट?
ऐसा है, प्रश्न किया है कि एक बोर लगाने में कितना खर्चा आता है, ये ऐसे बताना मुश्किल है, स्थान के अनुरूप है, फिर भी अंदाज देता हूँ, कोल्हापुर के एरिया में पानी यह 60-70 फुट पर लग जाता है, इससे कम भी लगता है, लेकिन सोच विचार करना चाहिए 60-70 फुट के नीचे का पानी उपयोग में लाना चाहिए, तो उसके लिए यह 60-70 फुट पर पानी लगता है, तो 150 फुट तक अपने को बोर करना चाहिए, 6.5 इंच का बोर करने के लिए उसमें 8 इंच की पीवीसी पाइप केसिंग 40 फुट तक डालनी चाहिए। क्यों डालनी चाहिए, कि भाई केसिंग डालने का ध्येय क्या है, कि आसपास का जो पानी है वो हमारे बोर में रिसकर न पहुंचे। आसपास का पानी कौन सा, साधारण रूप से गटर का पानी है, शहर है, ये सब व्यवस्था रहती है, तो वो पानी उस पर नहीं पहुंचे, इसलिए 40 फुट तक पीवीसी पाइप केसिंग डालनी आवश्यक है। इतना सब करने के लिए आज के हिसाब से 22,000 रुपए खर्च आते हैं बोर के लिए। ये मान सकते हैं 6.5 इंच के लिए। एक और व्यवस्था कहीं हमने अभी अनुभव में किया है कि पानी बोर का लगाते हैं 250-300-150 फुट पर जाके पानी, 22,000
भी दिला देंगे आप बन जाओ पंचम गुण दांता तो बैठे हैं
डॉक्टर साहब,
पंचम गुणस्थान में जाने वाले नहीं है,
उनके यहाँ तो कुआ है, तो कुआ ही है। अब इसमें जो है अभी क्या प्रश्न है, क्या हाँ 250 फुट पर पानी लगता है, तो उसमें क्या परेशानी आती है, 100-150 फुट पर जो है पानी के लेवल, तो सामान्य महिला 150 फुट से पानी हर रोज खींचे थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए मेरा विचार चल रहा है, अभी हमने किया नहीं है, हम उसमें जो है ये बाल्टी के साथ ऐसे रहट होता है ना, रहट लग जाएगा और उस रहट को मोटर से चलाएंगे, हाँ नहीं रहट यानी वो ऐसा चक्री, और उस चक्री को हम मोटर से चला देंगे, बटन दबाया बाल्टी नीचे गई,
जैसे लिफ्ट, फिर बटन लिफ्ट दबाया, जाता आता रहता वैसा,
बटन दबाया बाल्टी ऊपर आई, अपने को सिर्फ इतना करना है बाल्टी ऊपर आ गई तो पानी छानना है, तो वो श्रम भी दूर हो सकता है, मात्र यही है अपनी जिज्ञासा पुरुषार्थ।
हाँ जिनवानी बोलो।
एक प्रश्न क्या है, वो वास्तव में वो भी है, ज्वलंत प्रश्न है। ऐसा है कि घर में चार लोग हैं, पांच लोग हैं, बोर लगाया और एक ही वृत्ति है, तो उसको पानी कितना चाहिए?